रुक देते हैं।
अब देखेंगे को जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को छोड़ देता है उसका क्या होता है। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमावाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत सीधा श्लोक समझ में आ जाएगा। यह मतलब जो शास्त्र विधि मुत सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को त्याग देता है, वर्तते कामकारतः अपनी काम इच्छाओं के अनुसार काम करने में लगा रहता है, उसको न स सिद्धि मवापनोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न सुखम कोई सुख प्राप्त नहीं होता, न पराम गति न भगवत प्राप्ति होती। तब इसको फ्लिप कर दीजिए, जो व्यक्ति शास्त्रीय विधि को नहीं त्यागता है, शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य करता है और न वर्तते कामकारतः अपने काम के अनुसार काम नहीं करता, अपनी भोग इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, अर्थात भोग इच्छा जो डिक्टेट कर रही ये करो वो खाओ ये करो उसके अनुसार कार्य नहीं करता है, तो क्या होगा, स स स सिद्धि मवापनोति, सिद्धि प्राप्त होगी, उसे सुख प्राप्त होगा और उसे पराम गति प्राप्त होगी। तो इसलिए सबसे बड़ा भाग्य हमारा क्या है, हमको विधि पालन करने के लिए मिल जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात शायद आप समझ नहीं पाए, मैं कह रहा हूं कि हमको हमारा भाग्य ये है कि हमें कोई बताए कि भैया तुम क्या विधि पालन करो। ये समझ में आ गई बात, हमको अगर शास्त्र से बता दिया जाए कि ये विधि पालन कीजिए इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो उसको बोझा नहीं मानना चाहिए। यही कृपा है, यही गुरु की कृपा है कि वो बताए कि किस विधि से भगवान की प्राप्ति होगी, कैसे भजन करना है, कैसे सेवा करनी है। मेक समझ में आ रहा है ना, ये क्लिक कर रहा है आपको बात। कभी कभी मन रिवोल्ट कर सकता है कि भाई रोज मंगल आरती क्यों जाना है, जब क्यों करना है, भागवत में क्यों बैठना है, क्यों गीता पढ़ना है, तो क्यों करना है अनुभव कृष्ण प्रभु। इस श्लोक से आप क्या सीख रहे हैं, जो मैंने अभी ये पॉइंट बोला उसे रिलेट करने का प्रयास कीजिए।
विधि विधान का पालन कर रहा है गुरु की कृपा से, मतलब हम गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, विधि विधानों के शास्त्र का पालन कर रहे हैं,
उसे हमें क्या मिलेगा, तीन चीजें मिलेंगी। भगवान क्या बोलते हैं,
सिद्धि और परम गति।
तो लोग बोलते हैं प्रभु जी कृपा कीजिए, तो कृपा करेंगे तो आप क्या, आप मान लीजिए कृपा करेंगे अनुपम कृष्ण प्रभु तो किसी को क्या बोलेंगे, आपकी कृपा क्या है,
शास्त्र का पालन करो,
हाँ
प्रयास करो उसको करने।
एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, मंगल आरती करो, जप करो, भगवान को भोग लगाओ। अब क्या उसका मन करता है, उसका मन नहीं करता, लेकिन ये विधि जो आप बता रहे हैं इससे वो ठीक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत खुश हो जाना चाहिए, अरे मुझे विधि मिल गई। जैसे मेरे को शरीर में कष्ट था तो मैंने प्रभु जी को पूछा प्रभु जी दवा बताइए, कही दवा है, कहते मैंने कहा ठीक हो जाएगा, कहते आप हो ही जाएगा, कैसे खानी है, दो बार तीन तीन दिन में दो बार खानी है, उसके बाद एक बार खानी है, तो मैं खुश हुआ कि नहीं। अच्छा मेरे जीवन में कुछ बंधन लगेगा कि नहीं लगेगा, 7 दिन के लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें मेरे जीवन में कुछ बंधन लग गया कि नहीं लगेगा, कुछ खाना है कुछ नहीं खाना, ये दवा खानी है और उससे आगे जाके मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना क्या चाहिए, मैं हो ही गया, मैंने कहा अरे वाह इतनी से इतना से काम करने से बीमारी सही हो जाएगी। क्लिक नहीं समझ में आ रहा, और नहीं तो होप ही नहीं, आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है ना, हम लोग समझ नहीं पाते। और यही मन रिवोल्ट करेगा, हर व्यक्ति का मन यही रिवोल्ट करता है, रोज जप क्यों करना, और उसी से सतगुण की वृद्धि होगी और उसी से काम क्रोध खत्म होगा और उसी से हमारी सिद्धि सुख और पारंगति प्राप्त होगी। अनुवाद पढ़िएगा।
जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है।
एक मिनट रुकिएगा। श्री बलदेव विद्या भूषण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वो जो तीन नरक के द्वार हैं उनको छोड़ नहीं पाता है और वह आश्रम धर्म का पालन नहीं कर पाता है, मतलब वर्णाश्रम का। और जब तक व्यक्ति शास्त्रों को पालन नहीं करता है तब तक वह अपने आश्रम के धर्म का पालन नहीं कर सकता। भाई शास्त्र ही स्वीकार नहीं करेगा तो उसे क्या मालूम चलेगा कि गृहस्थ क्या कैसे करना है, इजंट इट। ठीक है, ये सीक्वेंस पकड़ रहे हैं, आश्रम धर्म पालन करेगा तो इन तीनों से मुक्त होगा। अब वो इसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है तो उसे मालूम क्या है कि क्या करना क्या है, केमो न हित हो, मेरा किसमें हित होगा ये पता ही नहीं उसको, ये शास्त्र नहीं स्वीकार कर रहे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र स्वीकार करना चाहिए। क्यों? शास्त्र के द्वारा मालूम चलेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को पालन करके मैं मुक्त होऊंगा। क्लियर? ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कामकारतः, मतलब अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी राग और द्वेष, ये मुझे अच्छा लगता तो मैं करूंगा, ये मुझे अच्छा लगता वो नहीं करूंगा, उसके अनुसार काम करता है, ये कामकारतः कहलाता है, और विधि का पालन नहीं करता, जो कार्य उसको करने के लिए बताए गए उसका पालन नहीं करता, और जो शास्त्र में मना किया गया है वो करने वो करता है, जो बताया गया वो नहीं करेगा, और जो बताया गया कि नहीं करना है वही कर रहा, इसे विकर्म कहते हैं, पता है ना, जो शास्त्र में मना किया गया, तो ऐसा व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। यहां पे सिद्धि का अर्थ कह रहे हैं हृदय की शुद्धि। क्या है सिद्धि का अर्थ? हृदय की शुद्धि। ध्यान देना चाहिए, जितने भी वर्णाश्रम है उसका उद्देश्य क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, हृदय की शुद्धि। आप भी यहां पे जो भी भक्ति कर रहे हो उसका मुख्य उद्देश्य है हृदय की शुद्धि, एट लीस्ट फर्स्ट इन द बिगिनिंग। कि हृदय शुद्ध होगा तो आगे की बातें आपको समझ में आएंगी, हमको समझ में आएंगी। उपदेशावृत में बात याद आ रही है, इंट्रोडक्शन में प्रभुपातिया बोलते हैं पहले व्यक्ति को सतगुण में स्थित होना पड़ेगा और फिर उच्चतर ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होगा। याद आ रहा है? सिद्धि का अर्थ क्या है? हृदय की शुद्धि। ठीक है। जिसकी आवश्यक, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जब उसका हृदय शुद्ध होगा तब उसको और अधिक समझ में आएगा कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को प्रेम करना। प्रभुपाद जी क्या एक जगह लिखते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा व्यक्ति को समझ में आता है कि उसके प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण। समझ में आए? प्रेम तो हम सबसे करते हैं, प्रेम करना सबको आता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि उस प्रेम को जो हमने विकीर्ण किया हुआ है, जगह जगह लगा रखा है, वो एकमात्र कृष्ण को देना है और कृष्ण के भक्तों को देना है। ठीक। हरि नाम करने से समझ में आता है ये बात। तो यानी कैसे समझ में आया? हृदय शुद्ध हुआ तो समझ में आने लग जाए कि मुझे भक्तों से प्रेम करना है, भक्तों की सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी।
हमें पता चल जाएगा ना हम क्या हैं, तो फिर उसके हिसाब से कार्य करें।
एग्जैक्टली। तो कैसे मालूम चलेगा? हृदय शुद्ध होगा, हृदय, हाँ हृदय शुद्ध होगा तब समझ में आएगा। तो जब हृदय ही शुद्ध नहीं हुआ तो सुख कैसे प्राप्त होगा? जैसे भगवान गीता में बोलते हैं अशांतस्थ ही कुतः सुखम, जिसका हृदय में हजारों कामनियां कामनाएं भरी हुई हैं वो सुख कैसे प्राप्त करेगा और फिर पराम गति मुक्त कैसे होगा? अब पढ़िए का तात्पर्य।
तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है।
क्लियर है? यही बात चर्चा कर रहे थे, शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम की जो नियम बताए गए। यस।
प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है।
और उससे क्या सिद्धि प्राप्त होगी? प्रॉब्लम मत करो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सिद्धि का मतलब क्या है? आत्मा की शुद्धि। यस। गुरु हृदय, आत्मा मतलब मन, हृदय की शुद्धि। यस।
यदि कोई इनका पालन ना करके काम क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।
साधना में भक्ति के लेवल पे हमें क्या करना है? अगर इच्छा हो भोग की तो भी उसको ध्यान नहीं देना है और ये देखना है कि मेरे गुरु को क्या प्रसन्न करेगा। नम्रता का अर्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे मन से, वाणी से और शरीर से जो मैं कुछ कर रहा हूं क्या उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे? कृष्ण तो चलिए आगे की बात, क्या गुरु प्रसन्न होंगे? नम्रता का अर्थ ये नहीं कि बस मैं पतित हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ना। गुरु की सेवा का अर्थ है उनके अनुकूल कार्य करना। मान लो गुरु जी कहे पानी लाओ तो कहेंगे मैं दूध लाऊंगा, तो गुरु जी की सेवा हुई? समझ गए ना? मतलब जो सेवा बोले जा रही है वो जो आपसे करवाना चाहते हैं वो उसको हम प्रेम भाव से करें गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए। और गुरु सामने हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। गुरु का जो वाक्य है वही हमारे लिए गुरु। ये बात समझ में आता है? वाणी के रूप में गुरु जी हमेशा हमारे संग रहते हैं और भगवान इस बात को बोलते हैं कि जब गुरु की आज्ञा पालन करते हैं तो फिर कृष्ण स्वयं भगवान खुद बोल रहे हैं मैं प्रसन्न हो जाता हूं हृदय में। अब ये सोचिए कि जब हम किसी से कोई भी बर्ताव कर रहे हैं ये तो और मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे गुरु जी बगल में बैठे होते तो क्या सोचते? ये बहुत मुश्किल। अगर ये मेडिटेशन आप कर लेके चले हैं कि प्रभुपाद जी अगर हमारे बगल में बैठे होते तो क्या सोचते? ध्यान कि अगर मान लीजिए मैं किसी भक्त से खराब बर्ताव कर रहा हूं तो प्रभुपाद जी अगर बगल में बैठे होते तो क्या सोचते? और ये ध्यान देना चाहिए कि वो लोग सब देख रहे हैं, वृहद भागवतामृत में एक वर्णन आता है, ब्राह्मण दुर्गा जी की पूजा कर रहा था, राधा रानी वहां से गोप कुमार को भेजती हैं, कहां से, गोलोक से, कहते हैं मेरी पूजा कर रहा है, क्योंकि दुर्गा जी अंततोगत्वा राधा रानी की एक्सपेंशन है, और फिर उनको मंत्र देते हैं, कृपा करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई हमको देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं। अब कहेंगे राधा रानी के पास टाइम है क्या ये सब देखने का, वो सब देख सकते हैं, एकदम सनातन गोस्वामी बोलते हैं। आप कहेंगे आपको लगता है दशरथी प्रभु की राधा रानी आपको देख रही है, आप ये सोचेंगे अरे कहाँ टाइम है, मेरे वक्त छोटा था जीव, मेरे टाइम क्या टाइम है, नहीं, सब जो ब्रज में आता है सबको देखते हैं भगवान, सबको राधा रानी कृष्ण देखते हैं, प्रभुपाद जी देख रहे हैं। तो ये भाव हमेशा याद, ये सत्य बात है, खाली भावना की बात नहीं, बिल्कुल सत्य है।
मंदिर में इतने ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, तो मैं फीडबैक चोरी हो गया, तो मैं नीलमाधव प्रभु के पास गया, तो मैं दंग रह गया कि इतने ज्यादा कैमरे और मेरी हर एक्टिविटी जो है, चाहे बाथरूम जाने की हो या मंदिर में कोर्टयार्ड हो या कहीं भी हो, और फिर वो चोर पकड़ा गया तो वो भी बिल्कुल दंग रह गया, उसको भी उम्मीद नहीं थी कि मंदिर में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है।
तो आप देख सकते हैं कि जो इस प्रकार से लोग कर सकते हैं, तो भगवान तो बहुत जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बल्कि भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय में भक्तों का कल्याण ही रहता है, जब कोई भक्ति स्वीकार कर लेता है। ऋषभदेव बोलते हैं मैं हमेशा भक्तों के बारे में सोचता रहता हूं कैसे उनका कल्याण होगा, पूरे जगत के बारे में तो सोचते हैं लेकिन भगत आपके बारे में सोच रहे हैं अनुपम कृष्ण, पता कितना अमेजिंग है ना। और ये सत्य बात है, हम अपने मजाक के लिए नहीं बोलते, कोई श्लोक मुझे बोल सकता है एतद विषयामति ही, जो भगवान का नाम जप करता है भगवान सोचते हैं ये व्यक्ति मेरा है और हमेशा इसकी रक्षा मैं करूंगा, चाहे वो थप्पड़ मार के करे चाहे वो गुलाब सुंगा के करे, उनकी इच्छा है लेकिन छोड़ने वाले नहीं है। भगवान पार्षद को नियुक्त किए हैं सब पूरे समाज में भक्तों की रक्षा करने के लिए, तो ये ध्यान देना चाहिए। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि क्यों बात बोल रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रीय श्रद्धा रहेगी तो हमें लगेगा नहीं भगवान मेरी क्रियाओं को देख रहे हैं, मुझे हमेशा अच्छे से पालन करना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए भगवान प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो। आगे पढ़िए।
दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधापतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंतोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है।
ये प्रपात कोट कर रहे हैं भागवतम से, चार इसका बंगाली प्यारी है, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकर्म करीते से ही रौरव पड़ी मजे। बढ़िया से वर्णाश्रम का पालन कर रहा है लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा, तो उन कर्मों को करते हुए व्यक्ति नरक में गिरेगा। और इस चीज को भागवत में बोला गया है, अवजानंत न भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टात पतंत्यतः, भगवान को नहीं समझता है और भगवान की सेवा नहीं करता है तो व्यक्ति नीचे गिरता है। तो वर्णाश्रम जो है मुख पादो भूल गया कोई बात नहीं, लेकिन जो वर्णाश्रम है वो भगवान के मुख के समान है, ब्राह्मण जो मुख के समान है और जो वैश्य है वो पेट के समान, लेकिन जो इस सारी चीजें वो करते हुए भी वर्णाश्रम का पालन करते हुए कृष्ण का भजन नहीं करता है तो फिर वह पतन का कारण बन जाता है। ये बात कृपा समझा रहा है
कि, और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं।
मतलब बोल दे भाई ईश्वर है लेकिन निराकार है, क्या सेवा करना।
अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावना में तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी
वह ये ले जाए का अर्थ है मतलब उसे खुद प्रयास करना पड़ेगा ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ लोग सोचते हैं नहीं बस गुरु जी आपके लिए जब करेंगे। ध्रुव महाराज के लिए जब कौन किया, ध्रुव महाराज। बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं। हम कभी कभी समझ नहीं पाते गुरु की कृपा है क्या, डॉक्टर ने कृपा करी तो क्या दिया आपको, काम किसे करना पड़ेगा। ये साधना भक्ति की डेफिनेशन है, कृति साध्य भवे साध्य, भावासा साधना वेदा कृति का मतलब है आपको अपनी इंद्रियों से करना पड़ेगा, गुरुजी आपके लिए नहीं करने वाले। मेक सेंस? इस सिद्धांत ही मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, कृति मतलब आपको करना पड़ेगा, आप आपके लिए कोई नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला सबको अपना प्लेन खुद उड़ाना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न योर रियलाइजेशन, अपने साक्षात्कार आपको कमाने पड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं देने वाला आपको, हमको, आपको नहीं हमको। बता सकते हैं, मान लो किसी ने बताया कि बढ़िया से बैठ के जब ऐसे करना चाहिए, तो ये कृपा है ना, अब करना तो हमको पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी स्वेच्छा, मेरी जो फ्री विल है वो तो मुझे स्वयं भगवान को अर्पित करनी है या गुरु को अर्पित करनी है। गुरु जी इतना मेरे लिए करेंगे, फिर तो फोर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात? कोई विरोध है? पढ़िए।
तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। कामकारिता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है।
क्या हमारे जीवन में ऐसा हुआ है? कई बार। और भक्त बनने के बाद तो हमें ज्यादा पता रहता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी भक्त लोग गलती करते हैं। इसके लिए ही भक्ति में थोड़ा सा ढील पड़ती है, अन्यथा भक्ति बहुत तेज है। लेकिन एक बात बहुत सूक्ष्म है, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। भक्ति में जो बढ़ाने वाली चीजें हैं वो तो हम स्वीकार कर लेते हैं, नाम जप भागवत श्रवण, लेकिन जो खींचने वाली चीज है उसको त्याग नहीं पाते। सत्संग तो हम करते हैं, लेकिन असत्संग को त्यागते नहीं। कुछ कुछ असत्संग, कुछ पाप क्रिया चलती रहती, छोटा थोड़ा, और वही पकड़ी रहती है। जैसे नाव खेद रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन लंगर डाल के रखे हुए नीचे। लंगर बहुत छोटा सा होता है, दिखाई भी नहीं पड़ेगा, नीचे पड़ा हुआ है, दुनिया में किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। इसे निकालना जरूरी है, भौतिक आसक्ति को खींचना जरूरी है। असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार्य। जैसे मुकुंदत्त महाप्रभु के लिए गाते थे, एक्चुअली निमाय पंडित सब होते थे, महाप्रभु के रूप में विख्यात नहीं थे, निमाय पंडित जी के लिए, भगवान के लिए सेम ही व्यक्ति हैं। वो खूब गाते थे, बहुत सुंदर गाते थे, सारे भक्त लोग बड़े खुश होते थे, लेकिन कहीं कहीं जाकर के वो निराकार वादियों का भी संग करते थे और महाप्रभु को बात पता थी। इसलिए बोले कि इसको मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो आप समझ पा रहे हैं। फिर उन्होंने उनको त्याग दिया, निराकार वादी को त्याग दिया, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है अब मेरे पास आ जाओ। इसीलिए वैष्णव आचार्य क्या बोले, सत्संग त्याग वैष्णव आचार्य। इस संबंध में एक और उदाहरण है कि विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी थी कि भगवान की भक्ति प्रेम भक्ति मुझे प्राप्त हो, लेकिन रावण की से प्रेम नहीं जा रहा था उनका, तो फिर भगवान की व्यवस्था से जब रावण ने लात मारी तब पूरी तरह भगवान के शरण में आ पाए। तीनों ने वरदान प्राप्त किया था, बताया आपको। रावण ने कुछ मांगा था, मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रह्मा जी से, और हिरण्यकश्यपु सॉरी क्या नाम है बीच वाले कुंभकर्ण ने कुछ बोलना चाह रहा था उसने, तो सरस्वती जी ने बोला कि आप मैं सोना चाहता हूँ, तो सोता रहा हूँ। और विभीषण जी ने बोला कि मुझे भगवान राम के चरणों में भक्ति प्राप्त हो, तो इन्होंने बोला तथास्तु। लेकिन दिक्कत ये थी कि रावण के प्रति आसक्ति थी, बाद में जब कटी तो फिर पूरी तरह से भगवान के शरण में जा सके। तो हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेरी कहाँ कौन सी विषय आसक्ति है जिसे मुझे त्याग देना चाहिए, जिसके द्वारा मेरी भक्ति जो है बाधित ना हो। यस,
इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। ये जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं।
एक इंटरेस्टिंग है, पुणे में भक्त लोग बोलते हैं जो मंकी करता है वह मंकी है। मंकी मतलब बंदर, तो मन इधर उधर भाग रहा है, तो वैसे ही हम उधर उधर जैसे मन बोल रहा वैसे करते हैं, तो वो चीज उचित नहीं। जो मंकी करता है वो मंकी है। मुझे अच्छा लगा था कुट। आगे पढ़िए।
ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती।
मैं इस पे एक और चीज बोलता हूं कि मन की आज्ञा पालन करने का हमें कोई पेमेंट नहीं मिलता, तो क्यों करें? आगे पढ़िए।
मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति,
ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी कोई लगे आपको कि ये विधि विधान बहुत कठोर है, तो ये याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन शुद्धिकरण के लिए है, भोग के लिए है ही नहीं, बनाया नहीं भगवान ने उसे। पढ़िए।
किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है।
ठीक है, रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।